श्रद्धा नहीं है तो मतलब क्या है, एक भगवान में श्रद्धा नहीं है तो किसी और में श्रद्धा जरूर है। तो हर एक व्यक्ति को श्रद्धा होती है कि नास्तिक व्यक्ति भी कोई सबूत नहीं दे सकता है कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, तो कोई पुरावा नहीं है, उसको श्रद्धा है क्योंकि भगवान दिखते नहीं है इसलिए भगवान है ही नहीं। नास्तिक सोचता है क्योंकि दुनिया में दुख है इसलिए भगवान है ही नहीं, तो वो भी एक श्रद्धा है। पर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब हमारा पुण्य स्वल्प होता है तो भगवान में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। क्यों नहीं उत्पन्न होती है? जब पुण्य और श्रद्धा का संबंध है, वास्तव में श्रद्धा जो है यह हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नायु, स्नायु इज फ्लैश मसल, स्नायु जो हमारे स्नायु होते हैं अभी उसके समान है। कोई व्यक्ति होते हैं कमजोर होते हैं, कोई व्यक्ति बलवान होते हैं, तो कुछ लोग जन्म से ही किसी को कोई तंदुरुस्त होता है, कोई थोड़ा बीमार होता है, यह एक तरह से जन्म से ही है। पर साथ साथ ये जो हमारे स्नायु है यह ऐसे नहीं है कि हम बदल नहीं सकते। तो जो हमारा कोई कसरत करता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छी तरह से अपने शरीर की देखभाल करता है, तो क्या है उसकी जो शरीर है शक्तिशाली बन जाएगा, स्नायु आ जाएगा। तो जैसे शरीर के स्नायु होते हैं जिसके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं, हम बोझा उठा सकते हैं, उसी तरह से ये बाह्य स्नायु है। जो हमारे अंतरंग स्नायु है वह है श्रद्धा। जो श्रद्धा का स्नायु है उससे हम अंतरंग बोझा उठा सकते हैं। अगर श्रद्धा का स्नायु नहीं है तो फिर जो दुनिया में समस्याएं आती है उनके बोझे में व्यक्ति दब जाता है। क्योंकि क्या होता है, श्रद्धा है तो हम समझते हैं कि ये समस्या का सामना करने में मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ में है। मत चिंता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादान्तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारः न शोष्यसि विनाश्यसि। भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मत चित्त, अगर आप मेरी चेतना करते में रहते हो, मेरा स्मरण करते हो, मुझ में श्रद्धा रखते हो, मत चित्त सर्व दुर्गाणि, सर्व दुर्गाणि समस्त समस्त समस्याएं जो है वह क्या होगी, मत प्रसादा मेरी कृपा के द्वारा तरिष्यसि, आप उनके परे चल जाओगे। तो ये समस्याओं के परे चल जाओगे मतलब क्या कि भगवान ऐसे नहीं है कि भक्ति करेंगे तो कोई समस्या आएगी नहीं। भगवान बताते हैं कि समस्या नहीं आएगी ऐसे नहीं कह रहे, वो क्या कह रहे हैं, समस्याओं का परिचय। कृष्णा डज नॉट ऑफर हाइडिंग प्लेस, कृष्णा ऑफर शेल्टर। भगवान जो है वो छिपने की जगह नहीं देते हैं कि ऐसे छिप जाओ कि समस्या है ही नहीं, ऐसी बात नहीं, समस्या है पर उसका हमें ऐसा आश्रय देते हैं जिससे कि हम अंतरंग शक्ति मिलती है, जिससे जो भी समस्या आए ठीक है, समस्या आएगी, समस्या क्या है कि मैं तो एक शाश्वत जीव हूं, मेरा भगवान से संबंध शाश्वत है, कितनी भी समस्या आएगी वो कुछ समय तक रहेगी तो चल जाएगी। जिस तरह से अगर हम कोई रेलगाड़ी से जा रहे हैं तो कभी कभी कोई रेलगाड़ी में जाते हैं तो कहीं फैक्ट्री होती है, कहीं ऐसी दुर्गंध आती है, और फिर बाद में जाते हैं कहीं हरियाली होती है, कोई स्टेशन होता है वहां पर कचरा है, गंदगी है और देख के बुरा लगता है। कई और जाते हैं तो स्टेशन जो है बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, तो भारत में दुर्लभ है पर फिर भी कोई हम जब प्रवास करते हैं तो स्टेशन आता है वो आएगा और जाएगा, हमारी गाड़ी जो है आगे चलने वाली। तो ठीक उसी तरह से हमारे जीवन की गाड़ी में कई स्टेशन आते हैं, कुछ सुख के स्टेशन होते हैं, कुछ दुख के स्टेशन होते हैं। पर मान लीजिए गाड़ी आगे जा रही है पर व्यक्ति अपना मन पिछले स्टेशन में अटका देता है तो क्या होता है, उससे गाड़ी आगे चल रही पर वो फंस जाता है और स्टेशन अगर गंदा है तो उसको दुख होता रहता है। उसी तरह से दिस वर्ल्ड इज नॉट, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेशन नॉट अ डेस्टिनेशन। ये जो जगत है यह हमारे सब जीवन के सफर में यह एक जगह है जिससे हम जान पा ले आगे, यह हमारे अंतिम गति नहीं है। जब हम समझते हैं कि भौतिक जगत की सब चीजें अस्थाई है और हम स्थाई है, भगवान से हमारा संबंध स्थाई है, तो उससे हम इस भौतिक जगत की समस्याओं से अधिक उचित नहीं होते। तो दो प्रकार से बता रहा हूं, जब हम श्रद्धा रखते हैं तो क्या होते हैं, हम समझते हैं कि भगवान हमारे मदद के लिए है और उससे क्या हमें अंतरम शक्ति मिलती है, और दूसरा है कि हम ये भी समझ जाते हैं कि जो भी समस्या है वो क्षणिक है, ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, आएगी जाएगी, तो मुझे ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये श्रद्धा हमारी अंतरंग स्नायु है, और जितना हमारा अंतरंग स्नायु जो मजबूत है उतनी चिंताओं से हम दब नहीं जाएंगे, चिंताओं का हम सामना कर पाएंगे और उनसे आगे बढ़ पाएंगे। तो ये श्रद्धा है। अभी अगर मैं कहता हूँ ये श्रद्धा स्नायु है, तो कोई कहेगा कि मेरे पास स्नायु है ही नहीं, मैं कमजोर हूं, कोई कहेगा मेरे पास स्नायु है, तो कोई श्रद्धावान है कोई अश्रद्धावान है, तो फिर क्या है, ये सत्य है, पर हम सब हमारे श्रद्धा के स्नायु को बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे बढ़ाते हैं, जो कार्यों से हमें श्रद्धा मिलती है वो श्रद्धा वो कार्य अधिक करके, जैसे अगर हमारे स्नायु कमजोर है तो कोई वजन उठाएगा, कोई कसरत करेगा, उससे श्रद्धा उससे स्नायु बढ़ जाए। ठीक उसी तरह से जो कार्य हम करते हैं जिनसे हमारे अंतरंग स्नायु श्रद्धा से स्नायु बढ़ते हैं, अगर वो कार्य हम करेंगे नियमित रूप से तो श्रद्धा जरूर बढ़ जाए। तो वो कार्य क्या है, वह कार्य है भक्तों का संग करना, उसमें आपके श्रवण करना, हमारे जो संशय है वह उनका निवारण करना, तो उससे क्या होता है हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। तो इसीलिए पर दुर्भाग्य के तो ये तीनों चीजें बताई गई है यहाँ पे कि महाप्रसाद गोविंद भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से भी हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। ये कैसे होता है यह आजमा के देख लीजिए। और प्रसाद खाते रहेंगे हम, तो कई ऐसे प्रसंग है अमेरिका में कुछ भक्त थे और डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे, और जब डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तभी एक गुंडा था और वह भक्तों को आके उसको गुंडागिरी करने में मजा आता था, तो भक्त डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और भक्त क्या है भक्त कोमल लगते हैं, ज्यादा शक्ति नहीं दिखाते हैं, तो सबको गुण लगते हैं, तो भक्तों को ज्यादा ही करता, तो भक्त जब डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो साथ प्रसाद भी लेके आते, तो क्या हुआ वह जब पीटने लगा तो भक्त ले आके उसने प्रसाद रख दिया और उसको प्रसाद मुंह में खिला दिया, प्रसाद का स्वाद ले लिया, छोड़ दिया, कुछ भक्त चले गए। तो एक दिन हुआ, दो दिन हुए, तीन दिन हुए, तो फिर क्या हुआ, एक महीना हुआ, तीन महीने हुए कि भक्त डिस्ट्रीब्यूशन करने आते थे और वो गुंडागर्दी करने आता था, उसको प्रसाद देते थे, भक्त वहां चले जाते और प्रसाद खाते बैठे थे। तो उसके बाद में क्या हो गया, सिर्फ प्रसाद खा के ही इतना आकर्षण हो गया उस प्रसाद से, और ये भक्त प्रसाद ले रहे हैं, मुफ्त में ले रहे हैं, स्वादिष्ट प्रसाद ले रहे हैं, तो क्या हो गया, अभी उसका हृदय तो परिवर्तित हो गया, पर फिर भी अभी वो तो एक प्रकार का दादा था, सबको दिखाना कि मैं सहम गया हूँ, मैं बदल गया हूँ, उसको अच्छा ही लग रहा हूँ दिखाना। फिर क्या हो गया, तभी ये भक्तों को वहां पे दादागिरी करने के लिए कोई और गुंडा आ गया, और क्या हो गया, भक्तों ने उस दिन सारा प्रसाद इस गुंडे को दे दिया, तो फिर वो अकेले रह गया और गुंडा उनको पीटने लगा, तभी इसको इतना गुस्सा आ गया वो जाके उस गुंडे को पीटने लग गया, और वो भाग गया वहां से, वो खुद प्रयास से चकित हो गए, और फिर बोले कि आपका प्रसाद इतना अच्छा है, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप कहाँ से आते, उसको मंदिर में लेके गए, और एक हफ्ते में वो खुद आके पूरे सृजन करने लग गया। तो क्या हुआ, कुछ प्रचार नहीं हुआ, प्रसाद के माध्यम से प्रचार हो गया। इसे कहावत है इंग्लिश अंग्रेजी में कि द वे टू द हार्ट इज थ्रू द स्टमक, जो आत्मा तक जो हृदय तक पहुंचने का रास्ता है वो पेट से है। यह कई भौतिक शरीर का विश्लेषण नहीं है, पेट से हम आत्मा तक नहीं हृदय तक नहीं पहुंच सकते, पर वास्तव में हृदय का परिवर्तन होता है, तो प्रसाद ग्रहण करने से श्रद्धा बढ़ती है। उसी तरह से भगवान के नाम के चिंतन से भी श्रद्धा बढ़ती है। तो अगर हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, उसका दोहराते हैं, तो उससे हम सर अनुभव करते हैं कि हमारा मन शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, जो काम क्रोध वो सब थम जाते हैं, और समझते हैं कि कोई साधारण ध्वनि नहीं है, तो उसके द्वारा हम ये अनुभव करते हैं, प्रत्यक्षावगमधर्म्यम सुसुखं कर्तुमामयम्। नवे अध्याय में भगवद्गीता के दूसरे श्लोक भगवान कहते हैं प्रत्यक्षावगमधर्म्यम, आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं, क्या अनुभव कर सकते हैं, सुसुखम कर्तुमामयम, सुख आपको मिल जाएगा इससे। और उसी तरह से ये जो प्रसाद है और भगवान का नाम है, इन दोनों का स्मरण, इन दोनों के साथ साथ वैष्णव का संग, तो ये तीनों अगर करते हैं तो हमारी श्रद्धा के स्नायु बढ़ जाते हैं। तो इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, वैष्णवे, भक्तों का संग है, क्योंकि भक्तों का संग होगा तो भक्त आएंगे तो आपको प्रसाद देंगे, पूछेंगे जप कर रहे हैं, बाकी दोनों अपने आप हो जाएंगे। तो क्या है, भक्तों का संग सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभी इसमें आप एक विडंबना देखेंगे, पहले क्या बताया गया है कि ये तीन चीजों करने से हमारे श्रद्धा बढ़ जाएगी। ये तीन एक तरह से एक अंतरंग स्नानग्रह कसरत है, अगर हम ये करेंगे तो इसकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। पर इस श्लोक में बताया है कि स्वल्प पुण्य जिन विश्वासो नहीं जानते, कि अगर हमारा पुण्य कम है तो इनमें विश्वास ही नहीं होगा। तो इनमें अगर विश्वास नहीं होगा तो हम ये करेंगे कैसे, और अगर करेंगे नहीं तो श्रद्धा आएगी कैसे। तो ये ऐसे लगता है हम फंस गए, श्रद्धा नहीं है इसलिए हम संग नहीं करते, प्रसाद नहीं ग्रहण करते, भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते, और हम स्मरण नहीं करते, हम इतनी चीजें करते नहीं है इसके अंदर श्रद्धा नहीं है। तो अभी ये इसकी इसमें से हम जो फंस गए हैं, अगर कोई फंस गया है तो निकलेगा कैसे बात। तो वास्तव में जो जिस स्तर पे है उस पे हम शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को बड़ा फ्रैक्चर हो जाता है और हाथ अगर टूट गया और फिर हाथ में जोड़ दिया है, तो तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपको अभी हाथ हिलाना चालू करना चाहिए, उससे आपकी आपका बाद में सेहत अच्छा होगा। पहले तो आपको आराम करना है, पर अगर बिल्कुल हाथ हिलाएंगे नहीं तो उसको अंग्रेजी में एट्रोफी कहते हैं, जो हाथ है वो निष्क्रिय हो जाएगा और फिर बाद में सड़ने लगता है। तो अभी फ्रैक्चर हो गया है तो अभी आपको थोड़ा सा हिलाना चालू करना है। अरे डॉक्टर मेरा हाथ खराब है इसलिए हिला नहीं सकता हूं, और आप कह रहे हैं ठीक करने के लिए हिलाना पड़ेगा, कैसे संभव है। तो बोले बात सही है पर ज्यादा अकलमंदी मत करो, जितना हिला सकते हो उतना हिला। ठीक है हाथ हिला उंगली हिलाओ, एक उंगली हिलाओ, पूरा उंगली नहीं लगते तो सिर्फ उंगली का अगला भाग हिलाओ बस, और कुछ मत करो। तो उसी तरह से हमारी श्रद्धा नहीं है तो ये चीजें हम कर नहीं पाएंगे, पर जितना हम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। और वास्तव में प्रसाद ग्रहण करने की ज्यादा श्रद्धा ही लगती है, इतनी श्रद्धा लगती है कि प्रसाद में आर्सेनिक नहीं है, और वो श्रद्धा रखना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो श्रद्धा प्रसाद तो स्वादिष्ट ही होता है, और उससे भले ही अभी उसकी दिव्य शक्ति में श्रद्धा नहीं है, उसके स्वाद में तो श्रद्धा आ जाती है, अच्छा स्वाद है खा लेते हैं। तो क्या है, उससे हम खा लेते हैं प्रसाद, उससे थोड़ी सी भक्ति शुरू हो जाती है। तो ये तीन चीजों का अभाव के कारण हमें पुण्य नहीं है, इसीलिए हमें इन तीन चीजों की श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा नहीं है इसलिए हम तीन चीजें करते नहीं है। पर शुरुआत कर जहां से हो सकते वहां से शुरुआत कर देनी चाहिए, और उससे क्या होगा, उसे धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ जाएगी। वास्तव में जितनी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी उतने ही हम हमारे जीवन में संतोष रखते हुए कार्य कर पाएंगे। जितनी श्रद्धा कम है उतना जीवन में समस्याएं आएगी, उससे हम ऊपर नीचे फेंके जाएंगे, ऊपर नीचे फेंके जाएंगे। श्रद्धा जितनी आएगी उतना हमारा संतोष रहेगा। तो यहाँ पे जो पहली प्रार्थना ये क्या है, ये मैं बता रहा तीन प्रकार की प्रार्थनाएं होती है। तो ये तीन प्रकार की प्रार्थना है, दैन्य बोधिक, संप्रार्थनात्मिका और लालसात्मिका। दैन्य बोधिक मतलब कि प्रभु मैं भगवान में कितना दीन हूं, मैं कितना पतित हूं, इस प्रकार की प्रार्थना होती है। उससे क्या होता है, उससे भगवान से याचना करने की उत्कंठा जागृत होती है। तो ये प्रार्थना तीन प्रकार के समझना है तो हम सब उदाहरण ले सकते हैं। इसके लिए साधारणतः लोग प्रार्थना समझते हैं, मतलब क्या प्रार्थना मतलब क्या है, कि बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रार्थना मतलब ये केवल एक धार्मिक शॉपिंग लिस्ट है। मतलब क्या, शॉपिंग लिस्ट लेके हम दुकान में जाते हैं तो वही शॉपिंग लिस्ट लेके मंदिर में आ जाते हैं, उसको प्रार्थना कहते हैं कि भगवान ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो उस प्रकार की जो है प्रार्थना, वह बहुत ही प्राथमिक प्रार्थना है। वास्तविक प्रार्थना क्या है, हम याचना कर रहे हैं भगवान। तो मान लीजिए अगर कोई भिखारी है, तो अगर भिखारी को भीख चाहिए, तो अगर वो भिखारी देखते हैं कि उसके सामने ही मेजवानी का प्लेट है और वो मेजवानी खा रहा है दूसरे हाथ से, कुछ भीख दे दीजिए, मुझे भीख की जरूरत क्या है, तुम तो ऐश कर रहा है। तो क्या होगा,
अगर भिखारी को भीख चाहिए तो फिर उसे क्या दर्शाना चाहिए सबसे पहले कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जब व्यक्ति देखता है कि तुम्हारे पास कुछ मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बड़ा भूखा हूँ, मैं बड़ा दीन हूँ, मैं बड़ा असहाय हूँ, तो उससे क्या होता है, जो व्यक्ति दान देने वाला है उसके हृदय में करुणा होती है। ठीक उसी तरह से ये दैन्य मोदी प्रार्थना क्या है कि हे भगवान मेरे पास कुछ भी श्रद्धा नहीं है, और जो चीजें जो कार्य करने से श्रद्धा आ जाएगी वो कार्य करने में रुचि नहीं है, तो मैं क्या करूँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। तो ये जब हम यह प्रार्थना करते हैं पहली चीज क्या है, हमारे दीनता हम व्यक्त करते हैं, हे भगवान मेरे कोई पात्रता ही नहीं है। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नाप्राधी च कश्चन परिहारे लज्जा में किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। यहां बताया प्रार्थना है कि मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा, हे भगवान मेरे से कोई पापी नहीं है, नाप्राधी च कश्चन मेरे से कोई अपराधी नहीं है, और अगर मैं कहूँ मैं बोलना चाहूँ कि मैं कितने पाप किए हैं कितने अपराध किए हैं तो उनकी संख्या इतनी है, परिहारे भी लज्जा में मैं श्लज्जित हो जाता हूँ, मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, पुरुषोत्तम हो, हे भगवान आप तो पुरुषोत्तम हो, आप सब पापों सब अपराधों से परे हो, आप सब सद्गुणों से पूर्ण हो, मैं आपके लिए क्या याचना करूँ। ये जो प्रार्थना है दैन्य मोदी प्रार्थना है। तो जो भीख मांगना होता है, प्रार्थना मतलब एक तरह से भीख मांगने के समान है। तो सबसे पहले मैं कितना तुच्छ हूँ, मैं कितना दीन हूँ दर्शक, और फिर दूसरा क्या है, भगवान आप कितने कृपालु, आप कितने दानशील हैं, आप कितने महान हैं, वह बताया। तो अगर मैं भिखारी हूँ और बोले कि आपके पास तो इतना है, आप तो इतने गुणशाली हैं, तो दूसरा बता दें। तो वैसे दूसरे प्रकार की प्रार्थना क्या है, उसको कहते हैं संप्रार्थनांतिका। संप्रार्थनांतिका मतलब भगवान को बताना कि भगवान आप कितने महान हैं। तो अभी रविवार को हम सुबह ब्रह्म संहिता गाते हैं मंदिर, तो ब्रह्म संहिता की पूरी प्रार्थना हम गाते हैं, उसमें कोई भी याचना नहीं हो रही है। वेणु पड़ंतमरविंद दलायताक्षं वरभावतं समतिताम्बुजसुन्दरांगं मंदरप्रकोटिकमद्विज विशेषशोभनं गोविंदवादिपुरुषोत्तमहं भजामि। हम बता रहे हैं वेणु पड़ंतमरविंद, वेणु आप सुंदर वेणु बजा रहे, अरविंद दलायताक्षं आपके जो आंखें हैं वो फूले हुए कमल के पुष्प के समान है, बलहाव धंसम आपके शिर सिर पे सुंदर मोर का पंख है, असिताम्बुद सुंदरांगम और आपके शरीर का वर्ण जो है असिताम्बुद है, मतलब जो नया बरसात के समय बादल निकलता है उसी समान है, और आपका सौंदर्य, यह तो मैं सिर्फ कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, पर क्या है आपका सुंदर, वो कंसुंदर जो है आपका कंदर्प कोटि कमलीयम शेष शोभनम, जो कंदर्प है कामदेव है वो सबको आकर्षित करता है, पर कोटि कोटि कामदेवों का आकर्षण आप में है। तो ऐसे गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, मैं ऐसे गोविंद भगवान का भजन करता हूँ। तो एक भक्त अमेरिका से आए थे, बता रहे मुझे कि वो पहली बार जब मंदिर में आए तो पहले वो दूसरे धर्मों में थे, और वहां पे क्या होता है, वहां पे वो याचना करते हैं भगवान से कि ओ फादर द वाच इन हेवन हैलो बी थाय नेम गिव अस आवर डेली ब्रेड। बोलते हैं कि हे भगवान आपका जो नाम है बड़ा महान है, उसका गुणगान हो, हमारा रोज का जो ब्रेड है जो अन्न है हमें दीजिए। तो ये प्रार्थना बचपन से वो करते थे, और उन्होंने पूरी ब्रह्म संहिता इतनी सुंदर इतनी लंबी प्रार्थना से ईश्वर परम कृष्णा से जो श्वेतदीप का वर्णन है, और मुझे कहे यहाँ पे मुझे मुझे ये चाहिए, मुझे कहीं आया नहीं, कैसी प्रार्थना है अंत जीव मिले कुछ आया कि नहीं, ऐसी कैसी प्रार्थना है। तो बाद में प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं प्रवचन में, अगर हम कहते हैं भगवान मुझे ब्रेड दो तो अच्छा है कि भगवान के पास जा रहे हैं ब्रेड मांगने के लिए, पर भगवान से हम ब्रेड मांगते हैं तो वो उससे हमारा भगवान का प्रेम नहीं दिखता है, ब्रेड का प्रेम दिखता है। क्या है, इट इज नॉट नॉट लव ऑफ गॉड बट लव ऑफ ब्रेड। इसीलिए ये उच्च स्तर की प्रार्थना है, अच्छी प्रार्थना है, पर उच्च स्तर की प्रार्थना नहीं है। तो संप्रार्थनात्मि का मतलब केवल हम भगवान का गुणगान करते हैं। और तीसरी जो है वह है लालसामयी। लालसामयी मतलब जो हमारी इच्छा है हम व्यक्त करते हैं। और साधारणतः जो गंभीर भक्त होते हैं वो भौतिक चीजों की मांग नहीं करते हैं, वह आध्यात्मिक। भगवान मुझे आपके प्रति आकर्षण बना दिए, मुझे आपके नाम में रुचि दीजिए, मुझे आपके कथा में विमोचन करने का मौका दीजिए, शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, इस तरह से आध्यात्मिक चीजों के लिए हम मांग करते हैं। ये तीन प्रकार की जो प्रार्थना है, दैन बोधि का मैं कितना लिखूं बताना, संप्रार्थना का भगवान आप कितने महान है बताना, और लालसा नहीं मतलब कोई आध्यात्मिक लालसा की पूर्ति के लिए याचना करना। ये तीन प्रार्थनाएं हैं, इनमें से वास्तव में जो तीनों इस श्लोक इस प्रार्थना में, जो पहला जो श्लोक था वह क्या था, वह दैन बोधि का था, हे प्रभु मुझे श्रद्धा नहीं है आपके प्रति। तब ये श्लोक पुनः दोहराएंगे और फिर अगला जो गीत है वो शुरू करेंगे। महाप्रसादे गोविंदे,
महाप्रसादे गोविंदे,
नाम ब्राह्मणी वैष्णवे,
नाम ब्राह्मणी वैष्णवे,
स्वल्प पुण्य धनराजन,
स्वल्प पुण्य धनराजन,
विश्वासो नैव जायते,
विश्वासो नैव जायते।
तो अभी हम शरीर विद्याचार जो है साधारणतः एक प्रार्थना के रूप में गाते हैं, तो हम एक दूसरे पद्य में गाएंगे। शरीर विद्याचार जड़ेन्द्रियता है का,
जड़ेन्द्रियता है का,
इसे पहले विषय सागरे, शरीर विद्याचार जड़ेन्द्रियता है का। तो जो शरीर है यह अभी जो फीडबैक जो मुझे श्लोक है, ये वास्तव में ये गीत है, भक्तिनाथ ठाकुर ने रचना की है। जो शरीर है ये एक अविद्या का जाल है। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण शब्द है, अविद्या और जाल। अविद्या क्या है कि जो विद्या के विरुद्ध है, जो भूल जाते हैं सत्य, उसको अविद्या कहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई लखपति है, करोड़पति है, वो सोचता है इस स्मृति के कारण कि मैं क्या हो गया हूं, मैं अभी भिखारी बन गया, तो क्या है वो अविद्या है। तो ये उस तरह से हम सब अविद्या में फंसते हैं। हम भगवान के संतान हैं और भगवान जो सर्वधनवान है वो भगवान लक्ष्मीपति है, पर उनके संतान होते हुए अविद्या के कारण हम क्या सोच रहे हैं, मैं शरीर हूं और मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो मैं कैसे जीऊंगा, ये नहीं मिलेगा तो लोग देखेंगे नहीं, इस तरह हम चिंता करते हैं। तो शरीर जो है हमें अविद्या में डालता है, पर न केवल अविद्या में डालता है पर अविद्या में फंसाता है, ये जाल है। तो अविद्या और जाल ये जो शब्द है कि जो माया की दो शक्तियां हैं, एक है संप्रार्थनात्मिक, सॉरी एक है प्राक्षेपात्मिका और दूसरी है आवरणात्मिका। तो अभी ये सारे शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है, शब्द याद भी नहीं रहेंगे तो भी जो संत जो उसके शब्दों के पीछे जो जो संकल्पना है, कंसेप्ट जो है वो काफी सरल है। इसको समझना है कि दो प्रकार की शक्तियां जो है, आवरणात्मिका और प्राक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका मतलब जो आवरण कर देती है जिससे कि हम सत्य को भूल जाते हैं, और प्राक्षेपात्मिका मतलब जो हमें मोह की ओर ले जाती है। तो पहला जो मुझे पता जा रहा है शरीर अविद्या, तो ये अविद्या मतलब ये हमें आवरण कर देता है कि मैं आत्मा हूं ये भूल जाता हूं मैं, और जाल मतलब ये प्राक्षेपात्मिक। क्योंकि क्या है, शरीर अपनी वासनाएं उत्पन्न करता है और उन वासनाओं के पूर्ति में हम सब कुछ आध्यात्मिक चीज के बारे में भूल जाते हैं। तो ये समझना है, तो सरल उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति मूवी थिएटर में जाता है तो मूवी थिएटर में सबसे पहले क्या होता है, सब लाइट बंद हो जाती है, आवरणात्मिका शक्ति है क्या है जो सत्य है वो भूल जाओगे, और फिर बाद में क्या होता है वो मूवी के थिएटर के स्क्रीन पे मोह चला जाता है, वो क्या है प्राक्षेपात्मिका शक्ति आ गई, उससे क्या होता है उसके मोह में फंस जाते हैं। तो इस तरह से ये दो पद्धति जो है, हम पद्धति से हम मोह में चले जाते हैं। सबसे पहले क्या है, सत्य को भूल जाना और असत्य की ओर आकर्षित हो जाना। ठीक उसी तरह से माया जो है हमें क्या करती है, सत्य को भुला देती है,
हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं छोटा बालक हूँ, मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, यह सब शरीर के विकार है, आत्मा के गुण नहीं है। और उसके साथ साथ क्या होते हैं, उसके साथ साथ उसके साथ वासनाएं आ जाती है, इच्छाएं आती है, मानसिक प्रवृत्तियां जाती है, और मानसिक प्रवृत्तियों से व्यक्ति फंस जाता है। तो अविद्या जाल, शरीर क्या है, ये जाल है, क्योंकि शरीर अलग अलग प्रकार के मानसिक वृत्तियों का निर्माण करता है, और जिससे कि व्यक्ति भक्ति के भगवान की ओर आकर्षित नहीं होता है। तो शंकराचार्य बताते हैं अपने प्रार्थना में इस तरह से है कि शरीर होता है हर आयु में अलग अलग प्रकार के जो विक्षेप है, जो प्रलोभन है, वो निर्माण करता है। बालावस्था क्रीड़ा सक्तम, तरुणावस्था तरुणी रक्तम, वृद्धावस्था चिंता मग्नम, परम ब्रह्मा कोपि न सक्तम। तो कहते हैं गौर पूर्णिमा के प्रश्न इसके बारे में चर्चा की थी मैंने, इस श्लोक के बारे में नहीं। तो वे बताते हैं कि जो बालावस्था है, जो छोटा बालक होता है, बालावस्था क्रीड़ा सत्तम, बालक का शरीर क्या करना है, खेलना है, कूदना है, यहाँ जाना है, वो जाना है। यहाँ पे जो बालक है वो विशेष बालक है, क्रीड़ा से आसक्ति नहीं है, प्रवचन सुन रहे हैं। तो बालावस्था क्रीड़ा सत्तम, एक स्वाभाविक खेल कूद में लग जाता है, और फिर क्या होता है, ऐसा वो शरीर की ही प्रवृत्ति हो जाती है कि खेले बिना कूदने रहता ही नहीं, और सोचता है कि अभी बालक हूँ, ठीक है, अभी खेलकूद कर रहा हूँ, बाद में जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आध्यात्मिक वासी हूँ। तो क्या होता है, तरुणावस्था तरुणी रक्तम, जैसे व्यक्ति तरुणावस्था में जाता है तो क्या होता है, शरीर की प्रक्रिया अलग अलग चालू हो जाती है, और शरीर में अलग अलग रसायन जाते हैं, और जब उससे क्या होता है, व्यक्ति पुरुष को स्त्री की ओर आकर्षित होता है, स्त्री होते पुरुष की ओर आकर्षित होता है, और उससे क्या होता है, वह इस प्रकार का मोह है कि बाकी सब कुछ भूल जाता है। और खास करके जो अलग अलग मूवीज होते हैं उसमें दिखाते हैं रोमांस के बारे में, रोमांच के बारे में, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति कैसे ये भौतिक आकर्षण के कारण बाकी सब कुछ भूल जाता है, वो दिखाते हैं उसको, लेकिन दिखाते हैं उसको गुणगान करते हैं, उसका गुणगान करते हैं कितना प्रेम करता है, तो उससे क्या होता है, भक्ति और इससे आसक्त हो जाता है, भूल जाता है। तो और फिर बाद में जब जवानी चली जाती है, फिर वृद्धावस्थाएं लगती है, तो क्या होता है, खतरा होगा, उसका क्या होगा, मेरा बेटा तो मेरी बात मानता नहीं, उसका विवाह किसे करना है, मैं धंधा चलेगा कि नहीं, मेरी सेहत ठीक रहेगी कि नहीं, वृद्धावस्था चिंता मग्नम। तो वास्तव में वृद्धावस्था की चिंता क्यों बताई गई है, क्योंकि तभी बाकी कार्य करने के लिए शरीर में शक्ति नहीं रहती है, तो सिर्फ चिंता करते रहते हैं। और कहते हैं शंकराचार्य, परम ब्रह्मा को न सत्तम, परम ब्रह्म के प्रति भगवान के आकर्षण के लिए कोई भी नहीं रहता है, जीवन की कोई भी दशा ऐसी नहीं है, शरीर हर दशा में मोह निर्माण करता है, जिससे कि व्यक्ति को भगवान की ओर आकर्षित होने के लिए मौका ही नहीं रहता। तो ये शंकराचार्य ने बताया था लगभग 1500 साल पहले, पर अभी कलयुग ने बहुत प्रगति कर ली है। तो कलयुग में प्रगति के कारण क्या हुआ है, ये तीनों जो विक्षेप है ये तीनों स्तर में आ जाते हैं। तो आज कल की दुनिया में देखते हैं तो क्या होता है, बालावस्था तरुणी रक्तम। तो छोटे बालक भी होते हैं, उनको इस प्रकार के छोटे बालक होते हैं, छोटे बालिका होते हैं, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं कि आपको इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए कि एक लड़का लड़की लड़की को आप छोटे 5, 6, 7, 8 साल की लड़की है उसको लड़कों को ऐसे आकर्षित करने का, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, 7-8 साल का लड़का है उसको लड़कियों को ऐसे आकर्षित करना, उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट होते हैं। और इसको वास्तव में इस पे ये अमेरिका में बहुत हो गया, भारत में भी आ रहा है, उस पे पूरा एक विज्ञापन का इंडस्ट्री है, और उसको कहते हैं ट्विन इंडस्ट्री। ट्विन इंडस्ट्री मतलब क्या, कि टीन जो होते हैं, टीन मतलब जो लगभग 10 साल के बाद होते हैं, 13 साल से 19 साल के, और उसके पहले जो बालक होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं लगभग वो उसके पहले के साल के होते हैं, 3 से लगभग 12-13 साल का। पर ये ट्विन का इंडस्ट्री क्या कहते हैं, कि ये बालक और जो
तीन जो है उनके बिटवीन है, उसको ट्वीन कहते हैं, और उसके नाम पे वो 8, 9, 10, 11, 12 साल के लड़कों को भी प्रलोभित कर देते हैं, और इससे वो शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे अभी उस प्रलोभन के लिए तैयार ही नहीं है, पर फिर भी समाज के विज्ञापनों के कारण इस तरह से क्या होता है, बचपन से ही आ जाता है, और इतना ही नहीं है, बालावस्था चिंता मग्नम भव्य आ गया कभी एक भक्त का छोटा बच्चा था, बोलता था प्रभु ये बताया कुछ मैंने पहले प्रभु जी वो 34th स्टैंडर्ड में था, प्रभु जी आज हमारे क्लास में बहुत अच्छा सेमिनार हुआ, क्या सेमिनार था, बोला स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार।
अभी चौथी कक्षा का बालक है, और चौथी कक्षा का बालक क्या सिखाया जा रहा है,
स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, अभी वो शब्द सुनकर उसको स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस होता क्या है, पर दुर्भाग्य से ऐसे नहीं है, ऐसा होना चाहिए, पर आजकल के समाज में स्पर्धा इतनी आ गई है और इतने सबका प्रेशर होता है, मालूम उससे स्ट्रेस आ जाता है, तो क्या हो गया है, बचपन से ही न केवल क्रीड़ा है, तरुणी भी है और चिंता भी है, और इस तरह से जो विक्षेप है वो बढ़ गए हैं, और उतना ही नहीं है, मैं बोला तीनों दशाओं में तीनों विक्षेप है, तो तरुणावस्था क्रीड़ा सत्तम ये भी है, तरुण लोग भी है, तो वो क्या करते हैं, ये क्रीड़ा सत्तम जो है विशेष रूप से आ गया है, भारत ऐसा देश है, लोग कहते हैं भारत में क्रिकेट बड़ा प्रिय है, हाँ क्रिकेट प्रिय है, पर कैसा क्रिकेट प्रिय है, बहुत से लोग क्रिकेट देखते हैं और वो उसमें इतना पक्का हो जाते हैं, क्रीड़ा सत्तम, तो तरुणावस्था में भी क्रीड़ा सत्तम हो जाते हैं, तो मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तभी वह भारत के प्रगति कैसे करनी है उसमें कॉन्फ्रेंस था, और उस पर वहां अलग अलग लोग अलग अलग विषय बता रहे थे, तो मैं आध्यात्मिक विषय बता रहा था, तो वहां पे एक समाज जो बता रहा था आया था, वो बता रहा था कि किस तरह से क्रिकेट के कारण भारत का आर्थिक नाश हो रहा है, तो लोग बोले थे नहीं क्रिकेट से तो इतना पैसा आता है, IPL है, इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा उत्पादन होता है, बोलते हैं वो पैसा जो आता है वो अभी IPL या क्रिकेट टूर्नामेंट है उसमें जो पैसा आता है वह बड़े बड़े कंपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं वो पैसा कमा लेते हैं, पर उसमें क्या साधारण लोगों को पैसा जाता है, पैसा एक तरह से जाता है तो वो खर्च करते हैं मैच देखने के लिए, और दूसरी तरह से जो लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच जब चलता है तो लोग अपना काम बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि जो क्रिकेट मैच होती है अगर अभी कभी कोई राजनीतिक संघर्ष हो जाता है तो कभी कभी कोई राजनीतिक पार्टी जो होती है वो बंद पुकार देती है, और जो बंद पुकार देती है तो फिर क्या होता है, जो समाज की आर्थिक उत्पत्ति है उसमें एक व्यक्ति आ जाता है, तो बोलते हैं वो बता रहे थे समाज से कि हर क्रिकेट मैच ये एक आधे बंद के समान है, तो जितना समाज में रास होता है बंद से उसका लगभग आधा जो रास होता है वह क्रिकेट मैच से होता है, यहाँ पे कोई ये एंटी क्रिकेट प्रवचन नहीं चल रहा है, पर यहाँ पे कहने का भाव यह है कि ये केवल आध्यात्मिक स्तर पर विक्षेप नहीं है पर भौतिक स्तर पर भी विक्षेप है, तरुणावस्था क्रीड़ा सत्तम, और साथ साथ ये तो है तरुणावस्था चिंता मग्नम, तरुणावस्था में इतनी चिंता होती है कि ये क्या कैसे करूंगा, मैं वो कैसे करूंगा, खास करके आजकल की चिंता जो होती है ये व्यक्ति के भविष्य के बारे में, संबंध और पैसा इनके बारे में चिंता होती है, मैं पुरुष स्त्री से या स्त्री पुरुष से मेरा जॉब है वो रहेगा कि नहीं, मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में इतनी चिंता रहती है, और ये चिंता ऐसी होती है कि वास्तव में उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, ऐसे बताया है जो अभी आप में से कुछ चेयर पर बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, अभी चेयर पर बैठे चेयर स्थिर होता है, तो मान लीजिए कोई ऐसा कोई चेयर होता है रॉकिंग चेयर होता है वो हिलते रहता है, तो कभी कभी वो हिलते रहता है चेयर तो उसको थोड़ा मजा आता है, थोड़ा हिलने का मजा है, पर ये जो चिंता है ये क्या है, ये एक मेंटल रॉकिंग चेयर है,
ये एक मानसिक स्तर पे हमको हमेशा हिलाते रहते हैं, पर ये जो चेयर है इसमें कोई मजा नहीं है, इसमें सिर्फ हमारी शक्ति हो जाती है और कुछ फायदा होता है, ये बहुत क्या बहुत क्या। और तरुणावस्था चिंतामग्न, उसी तरह से क्या है कलयुग ऐसा है, वृद्धावस्था क्रीडामग्न भी है, क्या बूढ़े व्यक्ति भी क्या होते हैं खेलकूद में को देखने में रुचि लेते हैं। तो वास्तव में वृद्धावस्था जो है भगवान की प्रगति, भगवान की भक्ति करने में, एकाग्र होने में, और उतना ही वृद्धावस्था तरुणी सत्तर भी है। क्या है कैसे संभव है, यह क्या है, यह आधुनिक तंत्र ज्ञान का कमाल है। क्या तंत्र ज्ञान से क्या होता है, लोगों का भी वृद्ध हो गए तो शरीर में भोग करने की शक्ति चली जाती है, पर तंत्र ज्ञान से अलग अलग प्रकार के दवाइयां निर्माण करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि क्या होता है कि व्यक्ति कभी कभी कोई जो वैज्ञानिक बंदर को पकड़ लेते हैं और बंदर का जो अवयव है उसको निकालते हैं और फिर मानव में डालते हैं और फिर उससे क्या मानव भोग कर सके। प्रभुपाद कहते हैं कि एक बंदर अपना भोग खोता है ताकि दूसरा बंदर भोग कर सके। तो यह क्या है, तो अमेरिका में एक भारत में भी आ गया वो, तो एक जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो शरीर में भोग करने की शक्ति नहीं रहती, तो क्या कहते संशोधकों ने कोई दवाई निकाली जिससे कि वो शरीर आप पुनः नौजवान हो जाएंगे, नौजवान दिखने में नहीं पर भोग करने की शक्ति पुनः आ जाएगी। तो उससे क्या, उस ड्रग का नाम था वायग्रा, और उससे लोग लेके पुनः नौजवान होने का प्रयास कर रहे थे, पर क्या बहुत से लोगों ने वो ड्रग ले लिया, बाद में उनको पता चला कि ड्रग के बहुत से साइड इफेक्ट थे, और एक खतरनाक साइड इफेक्ट था कि उससे जो लोगों को पहले से हृदय का प्रॉब्लम है उनको हृदय का दौरा बड़ा आसानी से लगता, तो लोग अभी ड्रग लेते थे उत्साह लेते थे मैं भोग करूंगा, और भोग करने के उत्साह में प्रलोभन में उत्तेजन में हार्ट अटैक तो मृत्यु जाती थी, और ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लोग भी मृत्यु हो गई। और फिर सरकार ने कि हम लोग क्या करें इसके लिए, तो बोले कि हम एक दवाई को बंद कर देंगे, तो दवाई को बंद करते हुए तो सब लोगों ने बोला जो लोगों को हृदय का बीमारी है उनको समझते हमको समझा नहीं कर रहा हमको भोग करने दो। तो फिर वास्तव में समझे नहीं कि जो काम वास्तव है सबको हृदय की बीमारी है, वो असली बीमारी है। पर फिर भी तो फिर सरकार ने क्या फैसला किया अमेरिका में कि ये दवाई हम तभी देंगे जब व्यक्ति सर्टिफिकेट देगा कि डॉक्टर का कि मुझे हृदय की कोई समस्या नहीं है। तो अभी तो लोग इतने प्रलोभित हो रहे उत्तेजित हो रहे, क्या अपना नॉर्मल डॉक्टर है उसको हृदय की बीमारी पता है तो वो सर्टिफिकेट देगा नहीं, तो क्या एक नए डॉक्टर को जाते थे और नए डॉक्टर बोलते थे मुझे कोई हृदय की बीमारी नहीं है कृपया आप मुझे सर्टिफिकेट दे, और सर्टिफिकेट लेते थे और फिर वो जाके दवाई लेते थे और दवाई लेके उत्तेजित होकर हार्ट अटैक होकर मृत्यु जाते। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो वृद्धावस्था तरुणी लगती है, तो इस तरह से क्या है शरीर जो है ये अविद्या जाल है, शरीर में केवल अविद्या निर्माण करता है पर अविद्या में हमें फंसाता है। तो इस प्रकार के अविद्या जाल से हम कैसे निकल सकते, तो निकलना है बड़ा मुश्किल है, उसके बारे में बताया जा रहा है। शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय साधे काल, इसमें जो इंद्रियां हैं ये सारी इंद्रिय काल, ये मतलब है विनाश की ओर खींचती है, मृत्यु की ओर खींचती है। हम कहेंगे इंद्रिया कैसे मृत्यु की ओर खींचती है, वास्तव में जो इंद्रिया है हमें भौतिक चीजों की ओर आकर्षित करती है, और जितना हम भौतिक चीजों की ओर आकर्षित होंगे उतना हम भौतिक चेतना में रहेंगे, और जितना हम भौतिक चेतना में रहेंगे उतना भौतिक दुखों से हम पीड़ित होंगे और मृत्यु से भी हम पीड़ित होंगे। तो मान लीजिए अगर इसको समझना है तो कोई अभी टीवी पे कोई, मैं पहले एक मूवी थिएटर का उदाहरण दे रहा था, तो मूवी थिएटर में कोई शो चल रहा है, तो अभी वो जो शो है मूवी थिएटर में कई बार जो टिकट चेक करने वाले लोग ढूंढ रहे हैं उन्होंने शो कई बार देखा उसमें कोई रुचि नहीं है, तो अभी जो व्यक्ति वहां पे शो देख रहा है उसमें कोई हीरो है हीरोइन है और मृत्यु की शैया पे आ गए हैं, तो उसमें क्या होगा वो पूरे भावुक स्तर पर उससे आसक्त है और वो डर जाएगा उसकी मृत्यु में क्या होगा, तो शायद उसकी आंखों से आंसू भी आने लग जाएंगे और शरीर कांपने लग जाएगा। तो क्यों, पर वहां पे वो जो टिकट चेक करने वाला है उसको कुछ भी नहीं परिणाम हो रहा है, क्यों, क्योंकि कोई आसक्ति नहीं है वहां पे। तो जितनी आसक्ति है उतना दुख आता है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं हमें भौतिक चीजें आसक्त करती है अगर उसके कारण ही यहाँ तक दुख आता है और मृत्यु का भी दुख आता है, विनाश आता है। पर जो भौतिक स्तर पर तो मृत्यु सबको आएगी, अनासक्त मृत्यु को भी आएगी, पर जो आत्मा है वो आसक्त नहीं है तो व्यक्ति भाव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम लौट जाए। उसके अगर हम चर्चा और करेंगे जनेन्द्रिय साधे का, और उसमें क्या है इन सब इंद्रियों में कि जीवात्मा जो है इस भौतिक जगत में जो फंसा है, विषय क्या है, विषय मतलब इंद्रियों के विषय है, और कितने विषय है, सागर एक सागर है, मतलब जा भी देखो वह इंद्रियों के विषय ही है, और उस कारण व्यक्ति को कहाँ राहत मिलेगी पता ही नहीं। तो इंद्रिय तृप्ति जो है वह हमेशा से थी, पर इस कलयुग में जो है ये इंद्रिय तृप्ति के प्रलोभन विश्व के इतिहास में इतने पहले कभी नहीं थे उतने आ गए। जो आजकल कलयुग में जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन की पद्धति ही कलयुग के पहले नहीं थी। कलयुग की बात छोड़ो, 500-100 साल के पहले भी इतने नहीं थे। पहले जो विज्ञापन मतलब क्या, जो व्यक्ति बेच रहा है वो दूसरों को बताएगा, ये चाहिए आपको, ये लो अच्छा लो, ये लो अच्छा है, ये लो अच्छा है। ऐसे आपसे बचपन देखे हुए तो कहते, तो अगर कोई कुल्फी वाला था, कुल्फी पाइए, कुल्फी वो ऐसे चिल्ला रहा, वही विज्ञापन हुआ करता। पर आजकल का विज्ञापन ऐसा है कि कहीं अभी ये विज्ञापन इतना शक्तिशाली है, जो अमेरिका सरकार है, अमेरिकी सरकार का, भारतीय सरकार का तुलना करते, अमेरिकी सरकार का जितना लोगों की सेहत के लिए बजट है, लोगों की सेहत के लिए सरकार जितना पैसा खर्च करती है, उससे 150 गुना अधिक जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो विज्ञापन के लिए खर्च करती है। और साधारण जो कंपनियां हैं जो विज्ञापन के लिए पैसा खर्च करती है वह साधारणतया 10 गुना उत्पादन के लिए पैसा खर्च करते उससे ज्यादा होते हैं। मतलब जो जो चीज बनानी है वो बनाने में इतना खर्चा नहीं करते, ये चीज कितनी अच्छी है वो बनाने में खर्चा करते। तो ये विज्ञापन के कारण ऐसा मोह आ जाता है कि व्यक्ति पूरा फंस जाता है। जीवन से विषय सागर, विषयों का सागर है। मैं एक बार कलकत्ता जा रहा था फ्लाइट से, तो एयरपोर्ट में खड़ा था, वहां पे एयरपोर्ट में टीवी था ऊपर, तो टीवी पे ऐसे ही वहां पे फिर फ्लाइट आया कि देख रहा था, ऊपर ही टीवी था, तो टीवी उसमें एक एडवर्टाइजमेंट था। वो एडवर्टाइजमेंट क्या था कि एक बॉलीवुड का कोई एक युवक था, और वो वहां पे कुछ लड़कियां चल रही थी, और युवक उनकी ओर देख रहा था, पर लड़कियां उनकी ओर देख ही नहीं रही थी, तो बड़ा मायूस हो गया। और तब वहां पे एक बॉलीवुड का स्टार आ गया, और जैसे ही बॉलीवुड का स्टार आ गया तो सारे लड़कियां उसी ओर चली गई और उसको आलिंगन करने लग गई, उसको चुम्बन करने लग गई, और ये उसको देख रहा था, ईर्ष्या कर रहा था। और फिर बॉलीवुड का स्टार उसको, वो लड़के छोड़कर उसके बाद गया, मेरा राज पता है आपको, क्या है राज, बोला उसने कोई शैम्पू कोई लोशन नहीं बनता, ये पहन लो, सारी लड़कियां तुम्हारे आकर्षित। फिर कुछ समय के बाद अपना लोशन लगा, वो शैम्पू लगा था शरीर में, क्या होता है सारी लड़कियां उठी मार जाती। और फिर ये जो विज्ञापन है ये पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बुद्धि के प्रति अपमान है।
सबसे पहले
कि कोई स्त्री कोई पुरुष से कोई शैम्पू लगा देता है उसके कारण उसे आकर्षित हो जाती, ये स्त्री के बुद्धि के प्रति कितना अपमान है। और ऐसा बकवास कोई पुरुष विश्वास कर लेता है, ये पुरुष की बुद्धि के प्रति अपमान है। पर कलयुग ऐसा आ गया है कि ऐसे विज्ञापन उसमें कोई सत्य का नामो निशान ही नहीं है, पर उसके और भी लोग आकर्षित होते तो हो जाते हैं। जीवन से ले विषय सागर, तो हम विषयों के सागर में फंस गए इस भौतिक जगत में। हम कृपया पहला श्लोक पहला पंक्ति हो रहा है, फिर उसे बोल जाए, शरीर अविद्या जान,
शरीर अविद्या जान,
जड़ेन्द्रियता है कान,
जड़ेन्द्रियता है कान,
जीवन से ले विषय सागर,
जीवन से ले विषय सागर,
जीवा
भक्ति
लोभ
मोय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे तो इन सब सारे इंद्रिया बड़े मुश्किल है नियंत्रण करने के लिए, पर उन सब में ताल मध्य जिह्वा अति लोभ मोह, जिह्वा जो अति लोभ मोह बहुत ही लोभी है, सुदुर्मति और उसकी जो मति है ये दुर् बुरी चीजों में जाती है, और इसी कारण ताके जेता कठिन संसार, हमारा संसार बड़ा कठिन कर देता है, तो भी जिह्वा को इतना कठिन क्यों बताया गया है नियंत्रण करना, उसको लोभों में क्यों बताया गया है, क्योंकि हमारे इंद्रियां अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीजों की आकर्षित करती हैं, पर सारे इंद्रियों को जो शक्ति है वो जिह्वा से मिलती है, महत्वपूर्ण चीज है, शरीर को शक्ति अन्न से मिलती है पर इंद्रियों को शक्ति जिह्वा से मिलती है, फर्क है, हम अन्न का खाना जरूरी है इससे शरीर को शक्ति मिलती है, पर जब हम अन्न पेट के लिए नहीं खाते हैं, शरीर के लिए नहीं खाते हैं, हम जिह्वा के लिए खाते हैं, तो उससे क्या होता है, उस प्रकार से अन्न खाते हैं तो उससे सारी इंद्रियों को शक्ति मिलती है, जो डॉक्टर कहते हैं कि दो प्रकार की भूख होती है, एक असली भूख और एक नकली भूख, तो नकली भूख मतलब क्या, वो कहते हैं हंगर और सीडो हंगर, तो बोलते हैं कि जब आपको भूख लगती है खाते हैं तो उससे आपका शरीर और तंदुरुस्त होता है, असली भूख होगी, पर नकली भूख होगी तब आप खाते हैं तो उससे आपका शरीर और खराब होता है, तो नकली भूख क्या है, वो कहते हैं कि जब असली भूख होती है तो पेट में हमें कुछ चाहिए, पर अगर कोई कहता है कि मुझे आइसक्रीम के लिए भूख लगी है या मुझे पाव भाजी के लिए भूख लगी है, तो जो असली भूख होती है वो किसी वस्तु के लिए नहीं, विशेष वस्तु के लिए नहीं होती, वो सिर्फ खाने के लिए होती है, जो नकली भूख होती है वो किसी विशेष वस्तु के लिए होती है तो इसका मतलब नहीं है कि हमें किसी भी चीज से आकर्षण नहीं होना चाहिए, पर हमें दो प्रकार की भूख में फर्क समझना चाहिए, तो जब लोग क्या होता है कि ये खाना ये खाना ये खाना है, तो उससे क्या होता है, वो अधिकांश रूप से जो खाते हैं वो नकली भूख को निकालने के लिए खा रहे हैं, और ये नकली भूख जो होती है वह शारीरिक नहीं होती है, वो मानसिक होती है, मानसिक मतलब वो मन की तृष्णा है जिसको निकालने के लिए हम कर रहे हैं, पर वो तृष्णा जाती ही नहीं है, जब व्यक्ति शारीरिक भूख के लिए खाता है जब ढकार आ जाएगी रुक जाएगा, पर जो मानसिक भूख के लिए खाता है तो जब तक पेट दर्द नहीं करेगा तब तक खाते रहता है तो ये जो है तो जिह्वा जो है सबसे खतरनाक इंद्र क्यों, सबसे लोभों में इंद्र क्यों बताया गया है, क्योंकि जिह्वा से सारे इंद्रियों को शक्ति ली जाती है, जब लोग बहुत खा लेते हैं तो फिर क्या, बाकी सब जो अलग अलग प्रकार के भोग है वह करने के लिए व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, तो इसीलिए आचार्य ने बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि अगर जिह्वा को नियंत्रण कर सके हम तो बाकी सब इंद्रियों को नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट कृष्ण बैठा है okay. को तार मध्य जिह्वामति लोभो मोय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामोय कोरी बारे जिह्वा जाए प्रसाद नदी लोभाई तो कृष्ण बड़ा दयालु, भगवान कृष्ण बड़े कृपालु है, अरे क्या कृपा कर रहे हैं, हमारे जिह्वा को नियंत्रण करने के लिए हमें प्रसाद दे रहे हैं, तो इसे बताता अनेक धर्म बताया गया है कि हमें भगवान जब अन्न देते हैं तो उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि अन्न हमें जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य है, तो अगर हम
और भूखे रहेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको भूख से तड़पना पड़ता है, तो जिन लोगों को अन्न मिलता है उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। यह सत्य बात है, महत्वपूर्ण बात है। पर जो जो वैदिक शास्त्र और खास करके हमारे आचार्य का जो सिद्धांत बताते हैं हमें, वो बड़े ऊंचे स्तर का सिद्धांत है। तो यहाँ पे उनके शरीर का पालन करना, इसके लिए भगवान के पास याचना करने की, भगवान को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आचार्य वो कहते हैं कि हमें मुझे अन्न दे दो, इसके लिए भगवान को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, कि सारे जानवर जो है उनको बिना प्रार्थना के अन्न मिल जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि प्रार्थना हमें अन्न प्राप्त करने की जरूरत है। किसी भी तरह से हम प्रार्थना करते हैं अच्छी बात है, पर प्रार्थना का जो उच्चतम स्तर क्या है कि हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे जो अन्न दिया है वह केवल मुझे शरीर के पालन के लिए नहीं दिया है, आपका जो अन्न दिया है वो प्रसाद है। और यह प्रसाद क्या करेगा, न केवल शरीर का पालन करेगा पर यह मेरे मन का शुद्धि करेगा। तो इससे क्या होगा, स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, ऐसा प्रसाद हम कितना खाना चाहिए, अन्न दिलो भाई जिह्वा भाई नहीं, कि ये भी अन्न हम भगवान की कृतज्ञता के लिए, इससे भगवान कृतज्ञ होकर श्रद्धा से हम ग्रहण करते तो कोरी बारे जीवा जाए। तो प्रसाद के ग्रहण करने से जीवा पे जय हो जाता है। कैसे जय हो जाता है, वास्तव में जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उससे, क्योंकि भगवान से अभिन्न है प्रसाद, भगवान का प्रसाद है, भगवान के समान ही शुद्धिकरण करता है वो हमारा, और उससे जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं, जो वासनाएं हैं, वो धीरे 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 थम जाती है, कम हो जाती है। तो इसके तो बहुत प्रसंग है, पर मैं एक प्रसंग बताता हूँ। इसे पहले बताता था वो गुंडे का, तो गुंडे का कोई कहेगा ये तो बड़ा अद्वितीय है, एक्सेप्शनल है, पर ऐसे नहीं है। अभी जो इस्कॉन जो है, इसके एक फूड फॉर लाइफ नाम की संस्था है, जो जो अलग अलग पाठशालाओं में जाके जो गरीब लड़के जहाँ पाठशाला में पढ़ते हैं, जो गरीब विद्यार्थी लड़के लड़कियाँ, उनको मुफ्त अन्न देते हैं। तो साधारणतः जो मुफ्त अन्न वह ऐसे पाठशालाओं में देते हैं जहाँ पे गरीब लड़के लड़के जाते हैं, तो जो सरकारी पाठशाला जो होती है या उस समान की पाठशाला है। तो अभी इन पाठशाला में जो लड़के या लड़के आते हैं, कई बार वो बताया गरीब परिस्थिति आते हैं, तो उनका स्वभाव भी ज़्यादा उचित ज़्यादा वो क्रोधी होते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। तो फिर कई बार भारत भर में ऐसा अनुभव है कि जैसे प्रसाद चालू हो जाता है तो ये सिर्फ प्रसाद खा के जो विद्यार्थियों का जो स्वभाव है वो शांत होने लगता है। तो एक टीचर बता रहे थे, हमारे जो भक्त मिड डे मील करते हैं उनको एक स्कूल के टीचर बता रहे थे कि मैं जब ये वर्ग पढ़ाने के पाठशाला में आती थी तो पहले मुझे विद्यार्थियों से डर लगता था कि पाठशाला कक्षा में आ जाए तो विद्यार्थी क्या करेंगे पता नहीं, पर जब से प्रसाद चालू हो गया है तो विद्यार्थियों का स्वभाव बहुत शांत हो गया है। तो जब ये से पता चला, उन्होंने दूसरे पाठशाला बताया, तो दूसरे पाठशालाओं के टीचर बोले अपने विद्यार्थियों को कि आप अपने घर से टिफिन मत लाओ, हम आपके लिए प्रसाद लेके आए, उससे आपका स्वभाव अच्छा होता है कि हम देखते हैं। तो क्या इससे बहुत अभी लाखों लाखों की संख्या में ये प्रसाद वितरण हो रहा है। तो इसका हम भी अनुभव कर सकते हैं, प्रसाद अगर प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे तो हमारे जो अनियंत्रित वासनाएं हैं, अनियंत्रित इंद्रिया है, वो धीरे धीरे शांत होने लग जाए। तो कृष्ण बड़ा दयामय, कौरी बार जीव
जाए,
स्वप्रसाद अन्न दिल भाई, स्वाद में ही नहीं है पर ये इसके प्रभाव में नहीं है। ये जो अन्न है क्या करेगा, हमें शुद्धिकरण करके अमृतत्व प्राप्त कर रहे हैं। हमें आध्यात्मिक तत्व लेके भगवत धाम मिल जाए। अभी कोई कहे कि मैं तो प्रसाद भी ग्रहण करता हूँ, पर भक्तों का आनंद होता है। अभी तक मेरी इंद्रिया जो है वह नियंत्रण से नहीं आई, अभी तक मेरी इंद्रिया इधर उधर घूमते रहती है, मुझे परेशान करती है, तो क्या प्रसाद काम नहीं कर रहा है? हाँ, प्रसाद काम कर रहा है, पर हम काम नहीं कर रहे। उसका मतलब क्या है कि प्रसाद ग्रहण करना यह भक्ति का एक अंग है, पर इकलौता अंग नहीं है, कि भक्ति के दूसरे अंग भी है। तो प्रसाद ग्रहण करके क्या करना है? नाम पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, कि राधा कृष्ण के गुणगान करना है। तो चैतन्य चरितामृत में सुंदर लीला आती है कि जब सारंग भट्टाचार्य नाम के एक बहुत बड़े पंडित होते हैं, वो मायावादी पंडित होते हैं, और उनको चैतन्य महाप्रभु से जब संवाद होता है, वाद विवाद होता है, उसके बाद में वे परिवर्तित जाते हैं, भक्त बन जाते हैं और समझते हैं कि परम सत्य कोई निर्विशेष निराकार ब्रह्म नहीं है, वह परम पुरुषोत्तम भगवान है। और फिर इस तरह से जब उनका परिवर्तन हो जाता है तो उसके बाद में अगले दिन चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं। तो ये बड़े ब्राह्मण होते हैं, नियमों का बड़े आदर से पालन करते रहते हैं, ध्यान पूर्वक पालन करते हैं। तो सुबह चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके आते हैं मंदिर से, उनके घर में आते हैं, घर में ठकठकाते हैं। तो सारंग भट्टाचार्य उनसे थोड़ा देर से उठ गए होते हैं, तो उठते हैं, सरो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सार्वभौम, मैं आपके लिए जगन्नाथ का प्रसाद लेके आया हूं। जैसे प्रसाद देखते हैं वो, तो प्रसाद खा लेते तुरंत। तो तभी चैतन्य महाप्रभु बड़े आश्चर्य होते हैं, कहते हैं, हे सार्वभौम, आप तो ब्राह्मण हो, आपने भी स्नान नहीं किया है, संध्या वंदन नहीं किया, आपने गायत्री नहीं किया, प्रार्थना नहीं की, उसके बिना आप अन्न कैसे खा सकते हो? तो तभी सारंग भट्टाचार्य श्लोक बोलते, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम्, जैसे ही प्रसाद मिलो वैसे ही खा लो। तो बहुत बार भक्त सोचते हैं कि ये सारे लीला का यही लेसन है, ये लीला की यही शिक्षा है, प्रसाद मिले खा लो उसको। पर वास्तव में यह एक इससे क्या दर्शाया गया है, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जब ये सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु तो वे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि आज मेरे अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया, आज मैंने तीनों लोगों को जीत लिया। आप लोग कहते हैं क्यों? क्योंकि आज सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रसाद में, प्रसाद की शक्ति में श्रद्धा आ गई है। तो प्रसाद की शक्ति में श्रद्धा का मतलब क्या है कि जो मायावादी लोग होते हैं, निर्विशेष निर्वाद, वो भगवान को मानते नहीं है, इसीलिए भगवान की कृपा को ज्यादा महत्व नहीं देते। वो सोचते हैं अगर मुझे प्रगति करनी है तो प्रगति कैसे करनी है? मुझे दृढ़ता से नियम पालन करने हैं, और जितने दृढ़ता से नियम पालन करूंगा उतनी मेरी प्रगति होगी, और मैं नियम पालन नहीं करूंगा तो प्रगति नहीं होगी। तो इसीलिए उनकी श्रद्धा किसमें होती है? नियम पालन में होती है। और अगर उनको प्रसाद भी मिल जाए तो कहते हैं पहले नियम पालन करो, पहले स्नान करो, पहले जब पहले संध्या वंदन करो, फिर बाद में प्रसाद मिले। तो यहाँ पे इस लीला से क्या दर्शाया गया है कि नियम पालन से अधिक कृपा में श्रद्धा होना, और यह सत्य बात है कि भगवान की कृपा में श्रद्धा होना नियम पालन से अधिक। नियम पालन हमें जरूर करना है, पर नियम पालन से हमें प्रगति नहीं होती, भगवान में श्रद्धा होती है उससे प्रगति होती है। तो वह इस लीला से दर्शाया गया है। और यह जो है जो भगवान की कृपा में श्रद्धा जो होती है, भगवान की कृपा केवल भगवान के प्रसाद से नहीं आती है, भगवान के नाम से भी आती है, भगवान की लीला से भी आती है। इसलिए बताया गया है अन्नामृत पाओ, और फिर उसके बाद में क्या करो? ये भक्ति का एक अंग है, पर भक्ति के दूसरे अंग भी है। दूसरा अंग क्या है? राधा कृष्ण गुण गाओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, उसमें लग जाओ। तब वह भक्ति का वास्तव में एक हृदय है, भगवान का स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो। और कहते हैं कि मैं तो प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, भगवान का कीर्तन करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर मेरी इंद्रिया बहुत परेशान कर रही है, मन बड़ा विक्षेप कर रहा है। तो क्या करो? तो वही राधा कृष्ण अपनी कृपा, बड़े कृपालु अवतार के रूप में आए हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी। तो जब राधा कृष्ण के गुणगान करने में कोई व्यक्ति आता है तो
प्रेरणा को चैतन्य मिलताई।
तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को उनको डाक उनको पुकारो, हे चैतन्य हे नित्यानंद आप मेरी मदद करो, आप मुझे मार्गदर्शन करो, आप मुझे शक्ति दो। तो इस तरह से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो फिर जरूर उनकी कृपा के द्वारा हम सिद्ध हो जाएंगे और हम भगवान की प्रगति में, भगवान की भक्ति में तेजी से प्रगति कर सकते हैं। और फिर जो भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद है वह हम देखेंगे कि केवल यह अन्न के रूप से नहीं है, हर पद्धति से दिव्य ध्वनि है, हरि नाम है, हरि कथा है, यह सब भगवान का प्रसाद है। और ये बाकी हरि कथा हरि नाम ये जो भगवान का प्रसाद है और जो खाने का प्रसाद है, इन दोनों में फर्क क्या है कि जो खाने का प्रसाद है हम चाहे तो भी हमेशा के लिए नहीं खा सकते, क्या है शरीर का जो सीमा है वह हमें रोक देगी, पर जो हरि कथा का प्रसाद है, हरि स्मरण का प्रसाद है, वह सदैव हम ग्रहण कर सकते हैं। वह ऐसा है कि हम मृत्यु शैया पे होगी, हम बुढ़ापे पे हो, बीमारी में हो, तभी भी हम हरि स्मरण कर सकते हैं और तभी भी हम सुखी रह सकते, संतुष्ट रह सकते। मदाश्रय कथा मिश्रा शुण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विरधास्ताप नैतान्मद्गत चेतसः। श्री भागवत इसके सामने बताया गया है, भगवान का आश्वासन देते हैं अपने भक्तों के बारे में, मदाश्रय कथा मिश्रा, कि जब भक्त मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, कैसे आश्रय ग्रहण करते हैं मेरे कथा का, मेरे शुण्वन्ति कथयन्ति च, श्रवण करते हैं कथन करते हैं, उससे क्या होता है तपन्ति विविधा ताप। इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के ताप आते हैं पर नैतान मद्गत चेतसा, मद्गत चेतसा उनकी चेतना मुझ में है इसीलिए वो ताप उनको परेशान नहीं करते। तो ये कैसे होता है, कभी भी आप भी आजकल धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, तो अगर हम धूप से किसी रूम में जाते हैं जहां पे एयर कंडीशनिंग है तो क्या होता है राहत मिलती है। धूप तो है पर जब हम एयर कंडीशन में आते हैं तो वो धूप से हम पीड़ित नहीं होते। तो उसी तरह से इस भौतिक जगत में तपन्ति विविधा ताप रहेगा पर जब हम भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं तो क्या होते हैं, हमारी चेतना एक कृष्णा कंडीशन रूम के समान हो जाती है। तो उसमें क्या होती है, भगवान के स्मरण से एक दिव्य आनंद मिलता है जिससे कि भौतिक तापों से राहत मिल जाती है। तो इस तरह से जो राहत है हम सबको प्राप्त हो सकती है और यह इसकी जो विधि है, इस सुंदर प्रार्थना बताई है जो विधि है कि हम जितनी श्रद्धा है उस श्रद्धा से भक्ति कार्य में लग जाते हैं और किस तरह से हम अविद्या जाल में फंसे हैं गंभीरता समझ के भगवान उससे निकलने के लिए भगवान के भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। जब हम प्रसाद लेते हैं इससे हम भगवान की कृपा मिलती है और इस कृपा शक्ति प्राप्त करके हम दूसरी भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधिया है उसमें भी लग जाते हैं और जब हम हरि स्मरण जिसके रूप में जो प्रसाद है उसमें आनंद लेने लग जाएंगे तो वो ऐसा प्रसाद है वो हर पल ले सकते हैं, हर पल इस जगत में, इस जीवन में और अगले जगत में हमेशा के लिए। श्री रघुपाल की गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद।
आपका जो